मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 5 दिसंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही दोस्तों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मुनचुन कुमार, आप सहरसा बिहार से हैं। अंबिका प्रसाद, आपका गांव है मक्कुमत, जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से हैं। प्राज्ञेय तिवारी, आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। अशेंद्र सिंह राजपूत, आपका गांव है किशनगढ़, जिला दतिया मध्य प्रदेश से हैं। रोहित कुमार यादव, आप चंदौली उत्तर प्रदेश से हैं। अखिलेश कुमार, आप झुंझुनू राजस्थान से हैं। हेमेंद्र शर्मा, आप जयपुर राजस्थान से हैं। और विशाल कुमार, आपका गांव है कोटवा, जिला पूर्वी चंपारण बिहार से हैं। तो मुनचुन, अंबिका, प्राज्ञेय, अशेंद्र, रोहित, अखिलेश, हेमेंद्र और विशाल, आप सभी 8 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आपसे राजनीति, अपराध और न्यायालय, इस विषय पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए इससे पहले हम कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज में आपने क्रिश्चियन मिशेल का नाम सुना होगा। क्रिश्चियन मिशेल जो बेसिकली ब्रिटिश सिटीजन से ब्रिटिश नागरिक हैं, इनका नाम आया है। और मैं थोड़ी सी सतर्कता के बतौर इस घटना की चर्चा कर रहा हूं, सतर्कता के बतौर इस मायने में कि कभी कभी मैंने देखा कि प्री एग्जामिनेशन में अगर कोई घटना घटित होती है तो उसके किसी एंगल को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पूछ लिया जाए, इसे ही मैंने कहा है सतर्कता के बतौर, यानी कि मैं कोई चांस लेना नहीं चाह रहा हूं। आज के अखबारों में काफी कुछ लिखा भी गया है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर। देखिए इसका नाम ही है वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, यानी कि ये ऐसा हेलीकॉप्टर है जो वीवीआईपीज के लिए काम करेगा। वीवीआईपीज जिसकी सेवाएं लेंगे, जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या और भी जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, तो नो डाउट कि इसमें सुरक्षा वगैरह के बहुत अच्छे इंतजाम रहते हैं। ये हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे, 12 हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे। और ये हेलीकॉप्टर, इसका जो मुख्यालय है वो इटली रोम में है। हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे, फिर उस पर आरोप लगा कि इसमें मध्यस्थ बिचौलियों ने दलाली ली है और उस मध्यस्थ में इनका नाम है, मिशेल का नाम है। तो इनकी जो खबर छपी है वो इस मायने में कि जो यूनाइटेड यूएई है, जो उसने अब मिशेल को भारत को सौंपना स्वीकार कर लिया, स्वीकार क्या कर लिया है, भारत ये आ भी गए हैं प्रत्यर्पण संधि के तहत। मैं थोड़ी सी प्रत्यर्पण संधि के बारे में बता दूं। दरअसल होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यह है वैसे ब्रिटिश नागरिक, हो सकता है कि इन्होंने यूएई की भी नागरिकता ले ली हो, ठीक है, वो यूएई में चले गए। अब बेसिकली अपराध उन्होंने भारत के बारे में किया है, तो अब भारत उन्हें यूएई में जाकर के अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो दूसरा देश है। हम तभी उन्हें अपने देश में ला सकते हैं जब वह देश हमें इजाजत दे। अब बिल्कुल इसे देख सकते हैं जैसे कि नीरव मोदी की बात होती है या विजय माल्या की बात होती है। अब देखिए कि वो अपराध करके यहां से जा चुके हैं, भग गए हैं और वहां रह रहे हैं, तो हम उन्हें अरेस्ट करके ला नहीं पा रहे हैं। अपने ही अगर वो देश में होते तो चूंकि वो हमारे नागरिक हैं, हमारी अपनी सीमाओं में हैं, तो अरेस्ट करने की संप्रभुता हमारे देश के पास है। लेकिन चूंकि वो दूसरे देश में चले गए हैं तो वह संप्रभुता हमारी लिमिटेड हो जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार, हमारी सरकार दूसरे देश की सरकार से बात करती, उस देश की सरकार से बात करती है और यदि सहमति बन जाती है तो वह हमें उस नागरिक को सौंप देती है। बहुत से देशों के बीच में आपसी इस बारे में संधि भी हुई रहती है जिसे हम प्रत्यर्पण संधि कहते हैं। प्रत्यर्पण यानी कि हम अर्पण करेंगे, आपका अगर कोई नागरिक हमारे यहां आ जाएगा अपराध करके तो हम आपको सौंप देंगे, ठीक इसी तरह से हमारा कोई आपके यहां आ जाएगा तो आप हमें सौंप दीजिएगा। तो यही है प्रत्यर्पण, हम एक दूसरे के नागरिकों का एक दूसरे को अर्पण कर देंगे, सौंप देंगे। मित्रों, तो ये एक खबर है। कुछ खबरें मैं आज आपको न्यूज़पेपर्स के हिसाब से बताना चाहूंगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लग रही है, न्यूज में उनकी चर्चा नहीं है, और वो खबर है खासकर यूक्रेन संकट को लेकर। यूक्रेन संकट की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये संकट 2014-15 में आया था और उसी दौरान प्री एग्जामिनेशन में इस पर एक प्रश्न पूछा भी गया था। क्या प्रश्न था उसे बताना यहां मैं जरूरी नहीं समझ रहा हूं। तो थोड़ा सा हम यूक्रेन संकट को समझ लेते हैं कि बेसिकली ये है क्या, थोड़ी सी बेसिक्स इसको समझ लीजिए, इसके बेसिक्स को, ताकि खबर न्यूज में मुझे लगता है कि ये संकट अभी बढ़ेगा। तो न्यूज में जब आप कोई बात सुनेंगे या अखबारों में पढ़ेंगे तो तुरंत आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको मालूम है कि जो रूस है, यूएसएसआर हम कहते थे पहले, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, है ना, 1991 में उसका विघटन हो गया और वो अलग अलग 15-16 देशों में बट गया। तो जो 15-16 देशों में जब इसका विभाजन हुआ, जिसमें आप नाम सुनेंगे अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब नाम आप सुनते हैं, है ना, ये उसी से अलग हुए देश हैं, उसी में से एक देश है यूक्रेन। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मैप कंसल्ट करें तो आप पाएंगे कि जो यूक्रेन है वो रशिया के बिल्कुल वेस्ट पार्ट में है, रशिया के बिल्कुल वेस्ट पार्ट में, बिल्कुल बॉर्डर है आप कह लीजिए। और वहीं से एक हंगरी का तो नाम आपने सुना ही होगा, है ना, बहुत वेल नोन नाम है। तो हंगरी आप देखेंगे कि उसके लगभग लगभग बिल्कुल किनारे है, स्लोवाकिया, हंगरी, आपके मालडोवा, ये सब देश के जो नाम है जो उसके बॉर्डर में है, बिल्कुल वेस्ट रशिया का ये हिस्सा है और मास्को के काफी नजदीक है, मास्को के काफी नजदीक है, राइट। तो अब हुआ ये कि जब रशिया का विघटन हो गया, सब अपना अपना अपने अपने काम करने लगे, तो कुछ ऐसी स्थिति बनी कि यूक्रेन में ही कुछ संकट पैदा हुआ रास्ते में। और इसमें जो क्रीमिया एक जगह है, वो लोग अलग राष्ट्र की मांग करने लगे कि नहीं, हम अलग होंगे, हम यूक्रेन में नहीं रहेंगे। तो ठीक है, तो वहां रशिया उनको थोड़ा सा सह देने लगा। तो ऐसी स्थिति में फिर 2014 में वहां जनमत कराया गया कि अच्छा, आप बताइए कि आप रहना चाह रहे हैं या नहीं रहना चाह रहे हैं। तो जनमत संग्रह जो हुआ उसमें उन्होंने क्रीमिया के साथ रहने से इनकार कर दिया, यूक्रेन के साथ सॉरी रहने से इनकार कर दिया। अब जब यूक्रेन के साथ रहने से इनकार कर दिया तो अब प्रॉब्लम आई। तो 2014 में ये मामला हुआ और बाद में 2015 में इस क्रीमिया को, राइट, क्रीमिया पर आप यूं कह लीजिए कि रशिया ने डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं अधिकार कर लिया और उसे नाम दे दिया गया रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया। और इसी के साथ ही एक और जगह थी, वह है सेवास्टोपोल, सेवास्टोपोल उसको रशियन फेडरल सिटी मान लिया गया। सेवास्टोपोल इसकी चर्चा अभी ज्यादा नहीं होती, ज्यादा चर्चा क्रीमिया की ही होती है। तो जब रशिया ने इस पर यूं कह लीजिए कि एक अधिकार सा कर लिया क्रीमिया पर, तो इस रशिया के इस काम को न तो यूक्रेन ने एक्सेप्ट किया, यूक्रेन ने एक्सेप्ट नहीं किया, अनाधिकार चेष्टा माना, और न ही दुनिया के दूसरे देशों ने इसे स्वीकार किया। अमेरिका ने इसे स्वीकार नहीं किया, यूरोप के दूसरे देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया, और यह एक प्रकार से इसे कहीं न कहीं रशिया के द्वारा किया गया एक अनधिकृत प्रवेश क्रीमिया में माना गया। यह कुल मिलाकर इसका संकट है, राइट। क्रीमिया यूक्रेन में नहीं रहना चाह रहा है, यूक्रेन क्रीमिया को अपने अधीन मानता है, रशिया क्रीमिया पर कब्जा कर लिया है जिसको विश्व स्वीकार नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर के मामला मित्रों इसका यह है। अभी संकट क्या पैदा हुआ है, अभी कुल मिलाकर के संकट पैदा यह हुआ है कि देखिए, अब यूक्रेन तो आप यूं कह लीजिए कि रशिया के आंखों की किरकिरी बना हुआ है। तो हुआ यह कि अभी कुछ दिनों पहले ही 25 नवंबर को रूस ने यूक्रेन के 3 जहाजों को जब्त कर लिया और उसमें से उनके 24 नाविक थे उनको भी उसने बंधक बना लिया। जब रशिया ने यह किया तो फिर यूक्रेन ने भी रूस से जो उसकी उसकी जो सीमा लगी हुई, मैंने बताया कि उसका बिल्कुल वेस्ट पार्ट है, आप देखेंगे तो एकदम आपके समझ में आ जाएगा, मैप समझ देख लेंगे तो बहुत आपको आसानी हो जाएगी। तो उसमें एक महीने के लिए वहां के जो 10 क्षेत्र थे मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ लगाने का मतलब है कि जो 16 साल से और 60 साल की उम्र के जो रशियन है वो नागरिक हमारे यहां प्रवेश नहीं करेंगे, बस अब दोनों में तनाव शुरू हो गया। तो ये तनाव बस कुल मिलाकर के ये तनाव चल रहा है। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको पृष्ठभूमि बताई, इससे आपको चीजों को समझने में मदद मिल जाएगी। मित्रों एक और है पॉइंट, तेल की राजनीति शीर्षक से है, यह हिंदुस्तान का एडिटोरियल कमेंट है। वक्त को देखते हुए मैं इस पर आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूं, एडिटोरियल कमेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। इसका जो अंतिम, इसके जो अंतिम जो दो पैराग्राफ है उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी कि मैंने इसकी स्पेशल विशेष रूप से चर्चा क्यों की है। राइट, आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, राजनीति, अपराध एवं न्यायालय। देखिए मेरा शीर्षक इस मायने में है कि पॉलिटिक्स तो आप जानते ही हैं, अपराध भी आप जानते हैं, न्यायालय का नाम मैंने इस रूप में जोड़ा है कि अगर राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है या कोई अपराधी राजनीतिक बन जाता है और उस अपराधी के खिलाफ अगर कोई केस दायर किया जाता है तो बट नेचुरल है कि वो न्यायालय में दायर किया जाएगा। ठीक है, तो न्यायालय क्या रोल प्ले कर रहा है, तो इन तीनों को लेकर के मैंने ये बनाया है, ये टाइटल दिया है। और मान करके चले कि यह शीर्षक या ये तीनों जो विषय हैं और इनका आपस में इनको एक कर दीजिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। जब तक हम इसको नहीं समझते हैं, ये मान करके चलिए कि हमारे लोकतंत्र के सामने क्या संकट है, हमारी राजनीति आज इस स्थिति में क्यों है, कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है, कैसे देश का सही विकास हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर हो सकते हैं, इन सारे इश्यूज को हम अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने इस विषय को चुना है और इस विषय को अभी चुनने का कारण है एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, वो ये कि एक जनहित याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और उस जनहित याचिका को स्वीकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दो लोगों को जो वकील थे जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप ये देखें कि पूरे हमारे देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं यानी कि जो सांसद और विधायक हैं उनमें से किन किन के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। राइट, तो वो पूरे देश में गए, उन्होंने जाकर के आंकड़े इकट्ठे किए और आंकड़े इकट्ठे करने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। राइट, तो उस रिपोर्ट में देखिए कि क्या है। अब यहां मैं कुछ आपको डेटा दे रहा हूं, ये लेटेस्ट डेटा है और आप यूं कह लीजिए कि बहुत विश्वसनीय डेटा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जुटाए गए हैं और ये डेटा सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं तो आप इन्हें थोड़े से कहीं ना कहीं विश्वसनीय आंकड़े मान सकते हैं। उसमें उन्होंने किया बताया है कि हमारे देश में जो अभी चाहे वो वर्तमान सांसद हो या पूर्व सांसद और विधायक हो, टोटल 4,122 मामले निलंबित हैं, 4,122 मामले। राइट, चलिए ठीक है, 4,122 मामले निलंबित हैं मान लेते हैं। और ये उससे भी बड़ी बात है कि 30 सालों से लंबित है, 30 ईयर्स से मामले चल रहे हैं और अभी तक चल ही रहे हैं 30 साल। यहां न्यायालय आ गया, देखिए आप, और ये जो 4,122 है इसमें से 2324 आप कह दीजिए 2324 मामले केवल वर्तमान सांसद और विधायकों के अगेंस्ट है। मतलब अभी जो हमारे संसद में और जो विधायक विधानसभाओं में जो है विधायक और सांसद उनकी संख्या 2324 जिनके खिलाफ बकायदे कोर्ट केस आपराधिक मामले के चल रहे हैं, सिंपल मामले के नहीं, आपराधिक मामले जो थोड़े से ज्यादा संगीन किस्म के होते हैं। और जो फिर भूतपूर्व सांसद और विधायक है उनकी संख्या 1675 है। इंपॉर्टेंट बात यह है मित्रों की 30 साल से ये मामले लंबित है, 30 साल से यहां न्यायालय आ गया। और इसमें भी 264 मामले ऐसे हैं, 264 मामले ऐसे हैं जिनकी सुनवाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है कि इनकी सुनवाई अभी नहीं होगी, रोक लगा दी है, आप सोच करके देखिए। और इससे भी बुरी आप स्थिति देखिए कि ऐसे भी मामले हैं कि 1991 में दायर किया गया, 1991 में, अब आप देखिए कि भाई लगभग कितने साल हो जाएंगे, 29 साल हो जाएंगे, मामला दायर कर दिया गया लेकिन उनके खिलाफ अभी तक चार्जशीट ही पेश नहीं किया गया, चार्जशीट ही पेश नहीं किया गया, मतलब अपराध ही वो फ्रेम नहीं किए गए हैं। अब यहां सोचने की बात है कि ये कौन लोग हैं, देखिए सामान्य नागरिक के सामने साथ ऐसी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि सामान्य नागरिक ताकतवर नहीं है, सो कॉल्ड ताकतवर नहीं है। लेकिन चूंकि ये राजनेता हैं, राजनेता के पास नो डाउट कि सबसे ज्यादा अधिकार होते हैं, तो ये अपने अधिकारों का उपयोग या दुरुपयोग इस तरीके से कर रहे हैं कि इनके खिलाफ आप चार्जशीट ही दायर नहीं कर सकते। तो मित्रों, ये कुछ मैंने महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी है, डेटा आपको दिए हैं जो आपको बहुत लंबे समय तक काम आएंगे। अब इन सब पर आप विचार करें, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिस पर खूब लिखा भी जाता है, खूब इस पर बातचीत भी होती रहती है। कभी अवसर हुआ तो हम लोग इस पर अलग से बात करेंगे कि इसके पीछे रीजंस क्या है। वैसे रीजन क्या है ये मैंने थोड़ा सा आपको बता ही दिया है, और यही कारण है क्योंकि राजनीतिज्ञों पर अब न्यायालय बहुत ज्यादा निर्णय नहीं देती है, बहुत जल्दी निर्णय नहीं देती है, तो राजनीतिज्ञ इसका फायदा उठाते हैं और हमारी राजनीति का अपराधीकरण धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर कही है, उन्होंने कहा कि बिहार और केरल के न्यायालयों को ये आदेश दिया है कि वो जल्दी से जल्दी अपने मामलों को निपटाएं, और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अभी वो केवल दो राज्यों के बारे में कर रहे हैं, बाद में वो फिर दूसरे राज्यों में भी इस तरीके की व्यवस्था करने के बारे में सोचेंगे, और खासकर ऐसे मामलों को तो जल्दी से जल्दी निपटा दें जिनमें अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, यानी कि उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखते हैं अब थोड़े से स्टेप्स लिए हैं, उनके इन कदमों का क्या नतीजा सामने आता है, अब आगे देखेंगे। तो मित्रों, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से चार दोस्तों के नाम है अरुण देवांगन, मधु कुमारी, एपी पांडे और तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।